एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार। आज हम मनोविज्ञान की दुनिया में थोड़ा गहरे उतर रहे हैं, एक ऐसे विचारक के साथ जिनकी बातें अक्सर सुनने में तो आती हैं पर शायद पूरी तरह समझी नहीं जाती। कार्ल गुस्ताव युंग।
बिल्कुल। और युंग को समझने की इस कोशिश में हम मदद ले रहे हैं एंथनी स्टीवंस की। वो एक मनोचिकित्सक भी हैं और युंगियन विश्लेषक भी। उनकी दो किताबें हैं युंग और युंग, अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन। हम आज उन्हीं के सार पर बात करेंगे। ये किताबें ना युंग के मुश्किल लगने वाले विचारों को काफी आसान बनाती हैं।
हाँ, और आज के समय में देखें तो मतलब चारों तरफ इतनी अनिश्चितता है, लोग अपनी पहचान, अपनी जिंदगी के मायने, इन सब चीज़ों से जूझ रहे हैं। ऐसे में युंग के विचार, जैसे वो सामूहिक अचेतन या आर्किटाइप्स, ये अचानक बहुत ज़रूरी से लगते हैं, है ना?
सही कहा। स्टीवंस यही बात सामने लाते हैं कि यंग सिर्फ मानसिक बीमारियों का इलाज नहीं ढूंढ रहे थे, वो तो इंसान की जो गहरी ज़रूरत है ना, खुद को जानने की, एक संपूर्णता महसूस करने की, जीवन में कोई अर्थ या दिशा पाने की, उसको समझने की कोशिश कर रहे थे।
जैसे हमारे अंदर की दुनिया का कोई नक्शा बना रहे हो।
हाँ, कुछ वैसा ही, और वो भी एक वैज्ञानिक नजरिए से, ये स्टीवंस का मानना है।
अच्छा, तो युंग की दुनिया में गोता लगाने से पहले थोड़ा एंथनी स्टीवंस के बारे में बात कर लें। मतलब जिनके नजरिए से हम ये सब समझ रहे हैं वो कौन है और उनका तरीका इतना खास क्यों है?
हाँ जरूर। देखिए, एंथनी स्टीवंस एक जाने माने ब्रिटिश मनोचिकित्सक हैं और साथ ही उन्होंने ज्यूरिक के सीजी युंग इंस्टीट्यूट से बाकायदा युंगियन एनालिसिस की ट्रेनिंग ली है, तो उनके पास मेडिकल साइंस की समझ भी है और युंग के मनोविज्ञान की गहराई भी।
अच्छा, तो ये दिलचस्प कॉम्बिनेशन है। मतलब वो पारंपरिक मेडिसिन और युंग के थोड़े अलग गहरे विचारों के बीच एक पुल का काम करते हैं।
बिल्कुल, पर बात यहीं खत्म नहीं होती। उनकी दिलचस्पी ना विकासवादी मनोविज्ञान यानी एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी और इथोलॉजी, जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, इसमें भी बहुत है।
ओहो।
हाँ, और यही चीज उनके काम को बहुत अनोखा बनाती है। वो युंग के जो विचार हैं जैसे आर्किटाइप्स, उन्हें सिर्फ कोई रहस्यमयी चीज या दर्शन नहीं मानते, वो इन्हें हमारे विकास के इतिहास से, हमारी बायोलॉजी से जोड़कर देखते हैं।
मतलब कैसे?
उनकी एक और किताब है आर्किटाइप्स अ नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द सेल्फ, उसमें वो तर्क देते हैं कि ये आर्किटाइप्स असल में हमारी प्रजाति के साथ विकसित हुए मानसिक अंग हैं।
हाँ।
जैसे हमारे हाथ पैर है ना बाहरी दुनिया के लिए, वैसे ही ये आर्किटाइप्स हमारी भीतरी दुनिया को समझने और उसमें जीने में मदद करते हैं।
वाह, ये तो कमाल का नजरिया है। मतलब स्टीवंस ने युंग के उन विचारों को, जो कभी कभी हवा हवाई या समझने में मुश्किल लगते हैं,
हाँ,
उन्हें एक वैज्ञानिक, एक जमीनी आधार दे दिया।
हाँ, इससे ये आज के जमाने में ज्यादा रिलेटेबल लगते हैं। बिल्कुल, यही उनका बड़ा योगदान है। वो युंग को सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं रहने देते, उसे आज के लिए प्रासंगिक बनाते हैं।
तो स्टीवंस की इन किताबों का, जिनका सार हम डिस्कस कर रहे हैं, उनका मेन फोकस क्या है, वो क्या बताना चाहती हैं?
देखिए, ये किताबें युंग की जिंदगी और उनके जो मुख्य मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं उनका एक बहुत ही अच्छा सधा हुआ परिचय देती हैं। मकसद है कि युंग के जो जटिल गहरे विचार हैं उन्हें सरल और साफ तरीके से समझाया जाए, पर ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल हल्का कर दिया जाए।
और इनका सेंट्रल आइडिया क्या है, मतलब निचोड़ क्या है इन किताबों का?
निचोड़ ये है कि युंग का जो विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान है वो इंसान के मन को समझने का एक पूरा एक होलिस्टिक नजरिया देता है। स्टीवन जोर देकर कहते हैं कि युंग के सबसे जरूरी विचार, जैसे वो सामूहिक अचेतन और आर्किटाइप्स, ये सिर्फ कल्पना की उड़ान नहीं है।
अच्छा।
हाँ, बल्कि ये हमारे लाखों साल के विकासवादी इतिहास में हमारी जड़ों में बसे हुए हैं।
जैसे वो मानसिक अंग वाली बात आपने कही।
हाँ बिल्कुल, स्टीवंस कहते हैं कि ये आर्किटाइप्स हमें जिंदगी के जो बड़े बुनियादी अनुभव होते हैं, जन्म, मौत, प्यार, झगड़ा, माँ बनना, पिता बनना, इन सबको समझने और इनसे डील करने में मदद करने के लिए ही विकसित हुए हैं।
तो ये किताबें युंग के सफर को भी कवर करती होंगी, फ्रॉइड से उनका अलग होना वगैरह?
हाँ हाँ, सब कुछ। कैसे वो फ्रॉइड से अलग हुए, उनका अपना मानस का मॉडल क्या था, जिसमें वो व्यक्तिगत अचेतन के साथ साथ सामूहिक अचेतन की बात करते हैं, फिर वो खास आर्किटाइप्स कौन से हैं, पर्सोना, शैडो, सेल्फ।
अच्छा।
मनोविज्ञानिक टाइप क्या होते हैं, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट वगैरह, और सबसे ज़रूरी वो इंडिविजुएशन यानी एक पूरा व्यक्ति बनने की प्रक्रिया क्या है, स्टीवंस एक तरह से यूंग को आत्मा का प्राकृतिक वैज्ञानिक कहते हैं।
आत्मा का प्राकृतिक वैज्ञानिक, ये सुनने में बड़ा दिलचस्प
है ना? मतलब कोई ऐसा जो इंसान के अंदर की दुनिया का बड़ी बारीकी से एक वैज्ञानिक की तरह अध्ययन कर रहा था।
चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं, यूंग के कुछ खास विचारों को थोड़ा करीब से देखते हैं। शुरुआत मानस के मॉडल से करते हैं। फ्रॉइड ने तो कहा था व्यक्तिगत अचेतन होता है, हमारी भूली हुई यादें, दबी हुई इच्छाएं।
हाँ बिल्कुल, और यूंग ने उसे माना भी, ऐसा नहीं कि उसे नकार दिया, पर वो उससे बहुत आगे गए। उनका जो सबसे क्रांतिकारी विचार था वो था सामूहिक अचेतन का।
हाँ, ये शब्द बहुत सुना है, ये है क्या असल में?
ये हमारे मन की सबसे गहरी परत है। ये सिर्फ मेरी या आपकी नहीं है, ये पूरी मानव जाति की साझी मानसिक विरासत है। एक तरह का समझ लीजिए एक मानसिक ब्लूप्रिंट जो हमें जन्म से मिलता है।
ब्लूप्रिंट?
हाँ, और इसी सामूहिक अचेतन में वो रहते हैं जिन्हें यूंग ने आर्किटाइप्स कहा। स्टीवंस इसकी तुलना जीनोम से करते हैं। जैसे जीनोम हमारे शरीर का नक्शा है, वैसे ही सामूहिक अचेतन हमारे मन का, हमारी साइकी का नक्शा है।
अच्छा, तो क्या इसीलिए दुनिया भर की कहानियों में, मिथकों में, सपनों में भी हमें एक जैसे किरदार या पैटर्न दिखते हैं, जैसे हीरो की कहानी या माँ का रूप?
बिल्कुल, यूंग के अनुसार यही वजह है। ये आर्किटाइप्स कोई बनी बनाई तस्वीरें नहीं है दिमाग में, बल्कि ये दुनिया को अनुभव करने, उसे समझने और उस पर रिएक्ट करने के जन्मजात पैटर्न्स हैं, टेम्पलेट्स हैं।
कोई उदाहरण?
जैसे एक चिड़िया में घोंसला बनाने की अंदरूनी समझ होती है ना, उसे कोई सिखाता नहीं, वैसे ही इंसानों में माँ, पिता, हीरो, ईश्वर, यहाँ तक कि अपने अंधेरे पक्ष यानी छाया को अनुभव करने और समझने की एक अंदरूनी प्रवृत्ति होती है।
आपने छाया, शैडो का जिक्र किया, स्टीवंस कुछ खास आर्किटाइप्स के बारे में बताते हैं, जैसे पर्सोना, शैडो, सेल्फ, इन्हें थोड़ा समझाएंगे?
हाँ, ये बहुत जरूरी है हमारे व्यक्तित्व को समझने के लिए। पहला है पर्सोना, ये हमारा सामाजिक मुखौटा है, वो चेहरा जो हम दुनिया को दिखाते हैं ताकि समाज में फिट हो सके। ये जरूरी भी है, इसके बिना काम नहीं चलता। पर खतरा तब होता है जब हम इसी मुखौटे को अपनी असली पहचान मान लेते हैं, फिर अंदर से खालीपन महसूस होता है।
अच्छा, और दूसरा शैडो?
छाया, शैडो, ये हमारे व्यक्तित्व का वो हिस्सा है जिसे हम देखना नहीं चाहते, स्वीकार नहीं करना चाहते। हमारा डार्क साइड, हमारी कमजोरियां, जलन, गुस्सा, लालच, वो सब जो हमें लगता है कि अच्छा नहीं है।
तो इसे नकार देना चाहिए?
नहीं, यूं कहते थे कि इसे नकारने से ये और ताकतवर हो जाता है, और फिर ये अनजाने में हमारे व्यवहार को कंट्रोल करता है। इसे जानना, इसका सामना करना और इसे स्वीकार करना, यही खुद को पूरा बनाने की तरफ पहला कदम है।
ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, अपने अंदर के अंधेरे का सामना करना।
मुश्किल तो है, पर यूंग और स्टीवंस के अनुसार यही जरूरी है। संपूर्णता का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, मतलब है अपने सारे हिस्सों, अच्छे बुरे, उजाले अंधेरे, सबको मिलाकर पूरा होना। और तीसरा सबसे जरूरी आर्किटाइप है स्व,
सेल्फ।
ये हमारे पूरे मानस का केंद्र है, उसकी संपूर्णता का प्रतीक। ये वो ताकत है जो हमारे सारे बिखरे हुए हिस्सों को एक साथ लाती है, उनमें एक संतुलन बनाती है। यूंग मानते थे कि जीवन का असली मकसद इसी स्व के साथ एक होशपूर्ण रिश्ता बनाना है, अपने छोटे मैं यानी ईगो को इस बड़े स्व के साथ जोड़ना है।
आपने कहा था कि यूंग का एक कथन है कि दूसरों में जो हमें परेशान करता है उससे हम खुद को समझ सकते हैं, वो छाया से जुड़ा है।
हाँ बिल्कुल, स्टीवंस उसे हाईलाइट करते हैं। यूंग का मानना था कि जिन चीजों पर हमें दूसरों में बहुत ज्यादा चिढ़ होती है या गुस्सा आता है, अक्सर वो हमारी अपनी ही छाया के वो हिस्से होते हैं जिन्हें हम खुद में स्वीकार नहीं कर पा रहे, हम उन्हें दूसरों पर प्रोजेक्ट कर देते हैं।
अरे वाह, ये तो रोजमर्रा की जिंदगी में सोचने वाली बात है,
है ना?
और ये स्व का लक्ष्य, ये हमें यूंग के एक और बहुत महत्वपूर्ण विचार की तरफ ले जाता है, इंडिविजुएशन। ये क्या बला है?
इंडिविजुएशन या व्यक्तित्वकरण कह लीजिए, ये वो जिंदगी भर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें इंसान अपनी अनूठी, अपनी असली पहचान को खोजता है और एक संपूर्ण व्यक्ति बनता है। ये सेल्फ रियलाइजेशन जैसा है।
तो इसमें क्या क्या शामिल है?
इसमें अपने व्यक्तित्व के सभी हिस्सों को जानना और उन्हें एक साथ लाना शामिल है, जो होश में है और जो बेहोशी में है। परसोना और शाया, हमारे अंदर का स्त्री तत्व और पुरुष तत्व, जिन्हें यंग एनिमा और एनिमस कहते थे, ये सब मिलकर एक पूरा इंसान बनाते हैं।
और ये कब होता है?
ये पूरी जिंदगी चलता है, पर अक्सर जीवन के दूसरे पड़ाव में, मतलब मिडिल एज के बाद, ये ज्यादा जोर पकड़ता है, जब दुनिया की भागदौड़ थोड़ी कम होती है और ध्यान अंदर की तरफ मुड़ता है।
तो क्या इसीलिए हम देखते हैं कि 40-50 की उम्र के आसपास लोग अक्सर जिंदगी के मतलब पर, अपनी पहचान पर ज्यादा सवाल करने लगते हैं? क्या ये इंडिविजुएशन की पुकार हो सकती है?
बिल्कुल हो सकती है। ये एक तरह से अपनी असली आवाज सुनने, अपनी जड़ों तक वापस जाने की यात्रा है। यंग का ही एक और कथन है जिसे स्टीवंस बताते हैं, जीवन भर का सौभाग्य वह बनना है जो आप वास्तव में हैं। इंडिविजुएशन का यही लक्ष्य है।
इन किताबों से और क्या खास बातें, क्या संदेश निकलते हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए?
कई जरूरी संदेश हैं। पहला तो वही जिसकी हमने बात की, मानस का विकासवादी आधार। स्टीवंस बार बार कहते हैं कि यंग के विचार सिर्फ फिलॉसफी नहीं, हमारी बायोलॉजी से जुड़े हैं। आर्किटाइप्स हमारे मानसिक सर्वाइवल किट का हिस्सा हैं।
दूसरा,
संपूर्णता की खोज। जिंदगी का मकसद सही या परफेक्ट बनना नहीं है, बल्कि अपने सभी हिस्सों को, खासकर अपनी छाया को, पहचानकर और स्वीकार करके पूरा बनना है। समाज हमें अक्सर अपनी कमियां छुपाना सिखाता है, यूं इसके ठीक उलट कहते हैं, उन्हें जानो, समझो और अपनाओ।
और तीसरा,
अचेतन की रचनात्मक शक्ति। फ्रायड की तरह यंग अचेतन को सिर्फ दबी हुई इच्छाओं का गोदाम नहीं मानते थे। उनके लिए ये एक बुद्धिमान रचनात्मक शक्ति थी जो संतुलन बनाने का काम करती है। ये सपनों, कल्पनाओं, मिथकों के जरिए हमसे बात करती है, ताकि हमारा चेतन मन बहुत एक तरफा ना हो जाए।
ये दिलचस्प है, जैसे भारत में कहानियों और मिथकों को हमेशा बहुत महत्व दिया गया है।
हाँ, शायद यंग का नजरिया इसे एक मनोवैज्ञानिक आधार देता है। चौथा संदेश है विपरीतताओं का एकीकरण। मतलब मन की सेहत के लिए जरूरी है कि हम जिंदगी की जो विरोधी ताकतें हैं, जैसे तर्क और भावना, चेतन और अचेतन, बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया, इनके बीच के तनाव को झेलना सीखें और उनमें एक संतुलन खोजें। इसी तनाव से ग्रोथ होती है।
और पांचवा,
मिथक और प्रतीक का महत्व। ये सिर्फ बच्चों की कहानियां या पुरानी बातें नहीं है, ये हमारे मन की भाषाएं हैं। ये हमें गहरे अर्थों से जोड़ते हैं। स्टीवंस मानते हैं कि आज की दुनिया में, जहां हमने इन प्रतीकों से नाता तोड़ लिया है, हम अक्सर खोया हुआ और दिशाहीन महसूस करते हैं।
ये सारी बातें सुनने में तो बहुत गहरी लगती हैं, पर सवाल वही कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इनका क्या काम, हम इन्हें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं?
स्टीवंस कई तरीके बताते हैं, जैसे पर्सनल ग्रोथ के लिए। हम थोड़ा रुक कर सोच सकते हैं, हमारा परसोना क्या है? क्या हम सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कोई भूमिका निभा रहे हैं? हमारी छाया क्या है? किन बातों से हम बचते हैं, या कौन सी चीजें हमें दूसरों में बुरी लगती हैं?
और सपनों पर ध्यान देना?
हाँ, अपने सपनों पर ध्यान देना, उन्हें लिखना, उन पर सोचना, ये अचेतन से बात करने का एक तरीका हो सकता है। यंग सपनों को अचेतन का शाही रास्ता मानते थे।
और रिश्तों में ये विचार कैसे मदद कर सकते हैं?
रिश्तों में यंग का वो एनिमा और एनिमस वाला सिद्धांत काम आ सकता है। एनिमा यानी पुरुष के अंदर का स्त्री तत्व और एनिमस यानी स्त्री के अंदर का पुरुष तत्व। अक्सर हम अपने पार्टनर पर अपने अंदर की इस छवि को थोप देते हैं।
मतलब
हम उनसे वो उम्मीदें लगा लेते हैं जो असल में हमारी अपनी अंदरूनी छवि से जुड़ी हैं, और जब वो वैसे नहीं निकलते तो हमें निराशा होती है। अगर हम इस प्रोजेक्शन को समझें तो हम अपने साथी को ज्यादा असलियत में देख पाएंगे।
अच्छा,
यंग का एक और कथन याद आता है इस बारे में। दो व्यक्तित्वों का मिलना दो रासायनिक पदार्थों के संपर्क जैसा है। यदि कोई प्रतिक्रिया होती है तो दोनों बदल जाते हैं। रिश्ते हमें बदलते हैं, ये मानना जरूरी है।
और करियर या जिंदगी के बड़े फैसलों में क्या वहां भी यंग के विचार काम आ सकते हैं?
हाँ, क्यों नहीं। जैसे यंग ने मनोवैज्ञानिक प्रकार बताए थे, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, सोचने वाले, महसूस करने वाले, संवेदना वाले, अंतर्ज्ञान वाले, अगर हम समझे कि हमारा अपना टाइप क्या है, तो शायद हम ऐसा काम या माहौल चुन सकते हैं जो हमारी नेचर के ज्यादा करीब हो।
और वो जो मिडलाइफ क्राइसिस की बात हुई थी,
हाँ, उसे सिर्फ एक मुसीबत की तरह देखने के बजाय हम उसे इंडिविजुएशन की प्रक्रिया का हिस्सा मान सकते हैं, एक मौका खुद को और गहराई से जानने का, शायद जिंदगी की दिशा बदलने का।
मान लीजिए कोई है जो हमेशा दूसरों की बुराई करता रहता है, तो यूं के नजरिए से देखें तो शायद वो अपनी ही छाया को दूसरों पर देख रहा है।
बिल्कुल संभव है। या कोई जो अपने काम से बिल्कुल नाखुश है, शायद वो अपने टाइप को समझकर कोई ज्यादा संतोषजनक रास्ता खोज सकता है। ये आत्म जागरूकता ही पहला कदम है। यूं का वो एक बहुत दमदार कथन है जो स्टीवंस भी बताते हैं, जब तक आप अचेतन को सचेत नहीं बनाते, ये आपके जीवन को निर्देशित करेगा और आप इसे भाग्य कहेंगे।
वाह, मतलब अगर हम अपने अंदर के पैटर्न को नहीं समझेंगे तो जिंदगी बस होती चली जाएगी और हम उसे किस्मत का नाम देते रहेंगे।
बिल्कुल, अपने पैटर्न समझकर ही हम सचेत चुनाव कर सकते हैं, अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं।
इस पूरी बातचीत से मेरे लिए जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई है वो ये कि इंसान का मन कितना गहरा है, कितना जटिल है, और हेल्थ का मतलब सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं है, बल्कि जिंदगी की जो अलग अलग ताकतें हैं, विरोधी चीजें हैं, उनमें संतुलन बनाना है, पूरा बनना है। और ये कोई एक दिन का काम नहीं, जिंदगी भर चलने वाला सफर है।
हाँ, और मेरे लिए सबसे दिलचस्प बात है अचेतन के साथ जुड़ने का विचार, सपनों के जरिए, कल्पना के जरिए, प्रतीकों के जरिए, ये सोचना कि हमारे अंदर ही एक गहरा ज्ञान छुपा है जो हमें रास्ता दिखा सकता है, ये बहुत पावरफुल लगता है। और स्टीवंस ने यकीनन बहुत अच्छा काम किया है यूंग के इन गहरे विचारों को एक विकासवादी फ्रेमवर्क में रखकर आज के लिए सुलभ बनाने का।
श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को, यूंग का कौन सा विचार या कौन सा आर्किटाइप, जैसे हीरो, छाया, माँ, पिता या कोई और, उन्हें अपने जीवन के अनुभवों से सबसे ज्यादा जुड़ता हुआ महसूस होता है? शायद इस पर सोचना भी खुद को जानने की दिशा में एक छोटा सा कदम हो। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए अकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।